समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल जगत पर भी रहेगी हमारी नजर और उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को भी हम करेंगे याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिवस। परिक्रमा के आज के इस अंक के साथ मैं हूं मुदिता और मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो मुदिता, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। यू आर ट्यून टू परिक्रमा 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विथ मी टुडे इज माय को होस्ट मुदिता। एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेडलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। All these over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first. Campaigning for the fourth phase of Lok Sabha elections to end this evening, top political leaders on a whirlwind tour doing back-to-back rallies to woo voters.
विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ अलगाववाद के समर्थन की आजादी नहीं।
Prime Minister of Singapore Lee Hsien Loong praises contribution of talents from IITs and IIMs to his country's progress.
अफगानिस्तान के बगलान प्रांत में अचानक आई बाढ़ में 200 से अधिक लोगों की मौत।
अ पावरफुल सोलर स्टॉर्म इन ओवर 20 ईयर्स हिट अर्थ, पोजिंग थ्रेट टू कम्युनिकेशंस नेटवर्क्स एंड पावर ग्रिड्स एज इट कंटिन्यूज इनटू द वीकेंड।
भारत के रमित टंडन मिस्र के काहिरा में स्क्वाश विश्व चैंपियनशिप के दूसरे दौर में पहुंचे।
And now, Mudita, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about National Technology Day.
भारत में हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों को याद करना है। देश के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका है और पिछले कई सालों में भारत ने इस क्षेत्र में कई उपलब्धियां अपने नाम की हैं, जिससे देश और दुनिया के लोगों ने भारत की ताकत को पहचाना है। तकनीक के क्षेत्र में हर रोज नए नए आविष्कार और बदलाव हो रहे हैं। इन आविष्कारों में इंजीनियरों और वैज्ञानिकों का योगदान सराहनीय है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस उनके योगदान को सम्मान और पहचान देने का एक प्रयास है।
Yes, absolutely, Mudita. And on this special occasion of National Technology Day, we gather to honor the advancements that have shaped our world and continue to drive us forward into the future. National Technology Day is a moment to reflect on the transformative power of science, engineering and technological breakthroughs that have revolutionized the way we live, work and connect with one another. And National Technology Day is celebrated every year on May 11th, that is today, in order to pay tributes to the scientists, researchers, engineers and others who helped the country make progress in the field of technology. The first National Technology Day was celebrated on May 11th, 1999, and since then the occasion has been used to highlight the country's technological progress in various fields. As part of Operation Shakti, India successfully conducted the nuclear missile test at the Indian Army's Pokhran range on May 11th, 1998. The successful testing in Pokhran made India only the sixth country in the world to possess nuclear weapons. The government under the Prime Minister of Atal Bihari Vajpayee directed the Council for Technology to conduct the National Technology Day celebrations on May 11th from next year. Since then, Mudita, the event has been an annual affair aimed at highlighting India's quest for scientific inquiry, technological creativity and innovation. And the central government also uses the platform to announce the winners of Rashtriya Vigyan Puruskar or National Science Awards. Meanwhile, to mark India's technological prowess, several seminars, conferences and exhibitions are conducted across the country to mark India's technological prowess.
जी अभिषेक, और भारत जैसे विकासशील देश के लिए यह दिवस बहुत मायने रखता है। सरकार देश के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और नव प्रवर्तकों की उल्लेखनीय उपलब्धियों का सम्मान करते हुए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करती है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के भविष्य पर प्रकाश डालते हैं, साथ ही सार्थक चर्चा के लिए मंच भी प्रदान करते हैं। सरकार द्वारा प्रदर्शनियों और सेमिनारों का आयोजन भी किया जाता है, साथ ही युवाओं के लिए विज्ञान और तकनीकी पर आधारित प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। ये दिन वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के महत्व को दर्शाता है और आम जनता, खासतौर पर युवाओं और विद्यार्थियों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करता है। शैक्षणिक संस्थानों में भी इस दिवस को विभिन्न कार्यक्रमों जैसे कि व्याख्यान, प्रदर्शन और प्रतियोगिताओं के आयोजन के साथ मनाया जाता है।
Yes, let's now, Mudita, talk about three ways in which technology is beneficial to us. Firstly, technology is immensely beneficial in the healthcare and medical breakthroughs. The advent of technology has heralded a remarkable era of medical innovation, propelling us into a realm that was once the stuff of science fiction. Secondly, improved communication technology with its arsenal of video calls, messaging apps and social media platforms has defined geographical constraints, facilitating immediate communique between people irrespective of the bodily distance that once separated them. And lastly, enhanced education. Technology has performed a pivotal function in democratizing schooling by the proliferation of online courses, e-books and interactive learning systems. In other words, Mudita, it has revolutionized the education system. So Mudita, these are three ways where technology is of great help to us. And on this day, schools and colleges also play a vital role in hosting numerous activities that allow students to showcase their knowledge and talent in STEM fields. Additionally, individuals can participate in the celebrations by sharing relevant information about scientific and technological advancements on social media, further amplifying the spirit of the day.
जी अभिषेक, और जैसा कि आपने कहा कि विज्ञान और तकनीकी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा है, चाहे हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल फोन हो या घरों में इस्तेमाल होने वाले आम गैजेट्स, या चाहे हमारे इस प्रोग्राम का प्रसारण, नहीं?
Absolutely.
तो इसलिए आम नागरिक के तौर पर हमारा भी यह कर्तव्य बनता है कि हम विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में हो रही नई खोजों के बारे में जानें और दूसरों को भी उनके बारे में बताएं। आप किताबों या डॉक्यूमेंट्री से जानकारी हासिल कर सकते हैं। तकनीक से जुड़ी जानकारी दैनिक जीवन में भी मददगार साबित होती है।
Yes, so Mudita, we have talked about ways in which technology is of great help to us. And let's now also talk about eight ways, Mudita, in which technology works against us.
जी.
Firstly, technology affects our sleeping habits. Secondly, technology leaves us feeling isolated. Thirdly, technology promotes a more sedentary lifestyle. Fourthly, technology is a constant source of distraction. Fifthly, technology leads to neck pain and bad posture. Sixth, technology promotes a shorter attention span. The seventh point is, it is much easier to be a bully while hidden away online, isn't it?
Bilkul.
And lastly, a loss of privacy online and a risk of hacking creates more deceit. So Mudita, this then are eight ways technology works against us instead of for us. And in essence, this day serves as a unifying force, recognizing the invaluable contributions of those who have driven India's progress and motivating the next generation to continue this legacy of innovation and progress.
जी बिल्कुल अभिषेक, और जैसा कि आपने कहा कि टेक्नोलॉजी के अपने खतरे हैं जिनसे हमें सावधान रहने की जरूरत है।
यस एंड एब्सोल्युटली मुदिता, एंड ऑन नेशनल टेक्नोलॉजी डे, लेट्स रिमेम्बर द वर्ड्स ऑफ शॉन जेरेटी, हु फेमसली सेड, द टेक्नोलॉजी यू यूज इम्प्रेसेस नो वन, द एक्सपीरियंस यू क्रिएट विद इट इज एवरीथिंग। एंड टू एंड दिस डिस्कशन, द वाइड वर्ड्स ऑफ क्रिश्चियन लुईस लैंज, हु सेड, Technology is a useful servant, but a dangerous master.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या है खास।
Yes, now we bring an interesting story from the heart of Gujarat. The Ambaji White Marble AWM, a symbol of a rich cultural heritage and architectural brilliance, has received a significant recognition. The tiles that grace the famous Ambaji Temple in Banaskantha district of Gujarat has been awarded the Geographical Indication GI Tag.
Ambaji is famous for its white marble that is translucent and can be polished to a high gloss. It is relatively hard compared to other varieties of marbles found in India. Interestingly, the Ambaji white marble has the maximum whiteness in the range of 95.80% to 96.30%. The relative hardness of this marble has enabled the traditional stone carvers, as seen in various Jain temples from the medieval period, to carve exquisite details as the minutest of the scale. These are the main reasons that because of which it is used in Indian temple architecture and stone sculptures since 7th century. The GI tag for Ambaji white marble is not just a recognition of the marble's unique qualities, but also a testament to the rich cultural and architectural heritage of our country. For Parikrama, this is Aparna Khunt, Akashwani News, Ahmedabad.
The first ever Nagaland Potato Festival was organized at Jakhama village in Kohima district on May 10th. The festival aims to promote and give organic potato cultivation with a window of opportunity and recognition in the state. Let's hear more.
In the first of its kind for the state of Nagaland, Potato Festival was held at Jakhama village, the southern Angami region in Kohima district. Organized by a group of like-minded people, the Potato Festival is a platform not only for the local farmers within the Jakhama village and southern Angami region, but also farmers of the other districts of Nagaland. This festival coincides with the potato harvest time, where there are two times to harvest potato. In the paddy field, it is cultivated in January, and in the mountains around April to September. Organizers of the first potato festival, Tepu Tor Richard, said,
The first potato festival of Nagaland, so it's a combined effort of individuals, like-minded individuals, who are like interested in promoting the organic farming. First and foremost is to promote the farmers. So when we promote the farmers, we promote their product indirectly, it goes like that. And when we promote their product, we promote the market. And when we promote the market, we are promoting the economy. When we promote the economy as a whole, the village is being promoted.
The organizers aim to enhance farmers' income by promoting the establishment of agri-based enterprises and to facilitate development of value-added products through capacity building and technical support. Around 70-plus stalls were set up by vendors displaying and selling varieties of potatoes besides demonstrating potato plantation. For Parikrama, Asonyo from Kohima.
भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कानून 1 जुलाई से लागू होने जा रहे हैं। राजस्थान में भी इन कानूनों को लागू करने की तैयारी की जा रही है। इन कानूनों के बारे में आम जनता को जागरूक करने और मीडिया के माध्यम से इनकी जानकारी लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुक्रवार को जयपुर में पत्र सूचना कार्यालय की ओर से पत्रकारों के लिए विशेष सम्मेलन का आयोजन किया गया।
सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में राज्य के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने कहा कि नए कानून बनने के बाद न्याय प्रक्रिया में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि इन कानूनों को दंड केंद्रित के स्थान पर पीड़ित केंद्रित बनाया गया है, जिससे आम जन को त्वरित और सुगम न्याय उपलब्ध होगा। डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि इन कानूनों को लागू करने से पहले प्रदेश में करीब 1,00,000 पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके लिए मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सम्मेलन के तकनीकी सत्रों में गृह मंत्रालय के सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में समन्वयक श्री जगमोहन शर्मा और श्री अशोक चौहान और तकनीकी विशेषज्ञ वरिष्ठ अधिवक्ता निशित दीक्षित ने पत्रकारों को इन कानूनों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। विशेषज्ञों ने बताया कि अब प्राथमिकी किसी भी पुलिस थाने में दर्ज कराई जा सकती है। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी FIR दर्ज कराई जा सकती है। इस अवसर पर पत्र सूचना कार्यालय के अपर महानिदेशक ऋतु शुक्ला ने कहा कि नए कानूनों के बारे में आम जन को जागरूक करने में मीडिया का महत्वपूर्ण किरदार है। परिक्रमा के लिए जयपुर से सुदर्शन नाहर।
In a series covering profiles of key constituencies across states and union territories during the Lok Sabha elections, today we bring you a report on the Rai Bareilly Lok Sabha constituency in Uttar Pradesh. In the fifth phase of Lok Sabha elections, voting will be held on the 20th of May in 14 seats of the state. Rai Bareilly is one of the significant seats going to polls in the fifth phase. Considered to be the stronghold of the Nehru-Gandhi family, this seat has been won by Congress 17 times. This time, former Congress President Rahul Gandhi is contesting from the seat. On the other hand, the Bharatiya Janata Party has once again announced the name of Dinesh Pratap Singh as his candidate, who is the minister in the state government. Thakur Prasad Yadav is contesting from the Bahujan Samaj Party. Apart from them, five other candidates also in the fray. We have more on this from a correspondent.
Five assembly constituencies come under the Raebareli parliamentary constituency. These include Bachrawa, Harchandpur, Raebareli, Sareni and Uchahar. On this Lok Sabha seat, 17,83,885 voters will decide the fate of eight candidates on 20th May. These include 9,31,171 male voters, 8,52,678 female voters and 36 third gender voters. Congress leaders like Indira Gandhi and Sonia Gandhi reached parliament from this seat. Congress has lost the election only three times on the seat, in which BJP has won twice and Janata Party once. In the 2019 general election, Sonia Gandhi won by defeating the BJP candidate by 1,67,178 votes. After Sonia Gandhi goes to Rajya Sabha, Rahul Gandhi will face the challenge of saving the last vote of the Gandhi family in Uttar Pradesh. To challenge Rahul Gandhi on this high-profile seat, BJP has fielded Dinesh Pratap Singh for the second time. Dinesh Pratap Singh left Congress and joined BJP in 2018. Thakur Prasad Yadav is in the fray. From BSP, all the parties have intensified campaigning to ensure victory on this seat. Om Awasthi, Akashwani News, Lucknow.
मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के चौथे और अंतिम चरण में सोमवार 13 मई को 8 सीटों पर मतदान होगा. इन सभी सीटों पर आज शाम 6 बजे प्रचार समाप्त हो रहा है. ब्यौरा हमारे संवाददाता से.
देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर और शंकराचार्य की ज्ञान भूमि के रूप में मशहूर खंडवा संसदीय क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 21 लाख से ज्यादा है. इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 10,65,000 और महिला मतदाताओं की संख्या 10,35,000 है. खंडवा संसदीय क्षेत्र पर बसपा और निर्दलीय सहित कुल 11 उम्मीदवार मैदान में है. हालांकि मुख्य मुकाबला भाजपा के ज्ञानेश्वर पाटिल और कांग्रेस के नरेंद्र पटेल के बीच है. खंडवा संसदीय क्षेत्र में 8 विधानसभा सीट शामिल है. इनमें से 7 पर भाजपा और 1 पर कांग्रेस का कब्जा है. खंडवा संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे, नंद कुमार सिंह चौहान और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे अरुण यादव जैसे दिग्गज कर चुके हैं. संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल.
We now bring you a report on Warangal Lok Sabha seat in Telangana. Warangal is the second biggest city and is known as the cultural capital of the state. Renowned for its exquisite temples and lakes dating back to the Kakatiya era, Warangal is also renowned for Laknapalli village, the birthplace of former Prime Minister P.V. Narasimha Rao. More on this from a correspondent.
Known as Warangal, Warangal Lok Sabha constituency has over 18 lakh electors with more women. A total 42 candidates are in the election fray. The main fight is on between BJP, BRS and Congress. Once a left-wing extremism affected region, later Warangal became a hotbed of political activity and also an educational hub. The constituency was reserved for SCs since 2009. The Congress won the seat 7 times, Telugu Desam for 5 times and the BRS clinched the seat 4 times. During the last election, Speed Dayakar of the TRS won the seat with significant majority. Following the BRS defeat in the recent assembly elections, sitting MP Dayakar joined the Congress. Another party leader, Aruri Ramesh, joined the BJP and now in the contest. The Congress fielded Dr. Kadiyam Kavya. The BRS chose Dr. M. Sudhir Kumar as its candidate. The development of an industrial corridor, setting up agriculture processing units, railway coach factory in Kajipet and the smart city mission in Warangal. Corruption allegations against the BRS have prominently appeared in the campaigning. Large number of employees of Singareni coal collieries in Bhupalpalli segment can also influence the outcome of the Warangal Lok Sabha constituency. Lakshmi, Akashwani News, Hyderabad.
And now time for the Defence News Capsule from the Directorate of Public Relations, Minister of Defence. The report has been filed by Broadcasting Officer Anand Saurav.
Defence PSU BEML is today celebrating 60th anniversary of its foundation. It was on this day in 1964 BEML was founded. On this occasion, we spoke to CMD Shri Shantanu Roy, who shared insights on various milestones. If you can tell about the journey in the past 60 years of BEML.
Today BEML completes 60 years of its existence, and on 11th of May 1964 BEML was formed. It was carved out of the Hindustan Aeronautics Limited, and the major reason for carving out BEML was it was felt that there should be an Indian company which can support our infra, our armed forces by way of the heavy earth moving equipment. And during our journey we had three signature moves which define the BEML of tomorrow. The first was the transfer of technology that we had with Komatsu Japan in 1967, and the year when we came out with our first manufacturing unit at Coalfields. The second signature move was our foray into the high mobility vehicles for usage by the defense forces, by the armed forces, which today serve as the backbone for the platform for various applications, including the missile systems, including the radar systems, and it is going to form the backbone of all our future strategic forces command. And the third signature move was in 2001 when we made an entry into the rolling stock manufacture for the metro rolling stock with our entry into the Delhi rolling stock. These are the three signature moves which define the BEML of today.
Self-reliance is one of the top priorities, and how BEML is contributing in making India, and in particular defense sector, self-reliance.
In our quest for Atmanirbharta, the armored recovery vehicles for the T-72 tanks, the Arjun armored recovery vehicles for the Arjun main battle tank. Apart from that, the combat engineering stream wherein we are serving the nation with our bridging systems as well as various mining, demining and mine laying equipment. One of the foremost recent successes was the first indigenously designed and developed 1500 horsepower engine for the new generation main battle tank or the future ready combat vehicles, which will serve as the backbone for our country's development for all futuristic combat vehicles as well as provide the backbone for the existing combat vehicles including the various tank formations. One of the major projects that we are currently delivering for the country is the first Vande Bharat sleeper train, which is expected to roll out shortly. BEML is also into heavy earth moving equipment, and the first indigenously designed, developed high-end mining equipment, that is a 20 cubic meter electric rope shovel, has been done in a record time of 2 years, and the first supplies have started already in the month of March.
What is your message to our listeners?
The BEML of today is built on the foundations of the three signature moves, and the BEML of tomorrow will be built based on the future signature moves that we are planning. As far as the defense is concerned, we aspire to get into the combat vehicles segment.
And before we conclude, today the nation is celebrating National Technology Day, which was started in 1999 to honor Indian scientists, engineers and technologists who worked for India's scientific and technological advancement and ensured the successful conduct of Pokhran tests in May 1998. On the occasion of National Technology Day, listen to our special episode of podcast Raksha Sutra tomorrow at 10 a.m. for Parikrama. This is Anand Swadav from the Directorate of Public Relations, Ministry of Defense.
Now we will take on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
In today's episode, we remember freedom fighter Asif Ali, who was born on the 11th of May 1888 at Bijnor, Uttar Pradesh. Husband of famous freedom fighter Aruna Asif Ali, he was the first Indian ambassador to the United States and also served as the governor of Odisha.
Asif Ali gave up his practice of law during the non-cooperation movement in the early 1920s and returned to India from England. He took part in the nationalist movement and used his legal acumen to help nationalist leaders in courtrooms. Revolutionaries Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru were defended by Asif Ali.
Asif Ali was imprisoned during the Quit India movement in 1942 and was detained in Ahmednagar Fort Jail. After his release, he served as the Minister for Railways in the interim government formed in August 1946. In that capacity, one of his first actions was the elimination supply of potable water on railway platforms like Hindupani and Muslim Pani. Both in his personal and political life, Ali sought to discard religious differences and promote harmony.
और खेल के मैदान में आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा।
Yes, and now we have reached that section of a program wherein we remember all those greats who are associated with today's date, and we start off with
उर्दू शायरी को अगर गालिब के हवाले से जाना जाता है तो उर्दू कहानी के लिए मंटो का नाम सबसे पहले आता है। आज उर्दू के मशहूर अफसाना निगार सआदत हसन मंटो की जयंती है। अफसाना निगार की जगह उनको हकीकत निगार कहना शायद ज्यादा सही होगा। उनके पास समाज की सच्चाई को देख पाने वाली पारखी नजर तो थी ही, साथ ही उस सच को बेबाकी से कहानी में ढालने वाला अंदाजे बयां भी था। अपनी कहानियों में खरा सच कहने के कारण ही उन्हें कई मुकदमों और अदालती कार्रवाई का भी सामना करना पड़ा। इसके बावजूद वे साफ शब्दों में खुद कहते थे कि जमाने के जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, अगर आप उससे वाकिफ नहीं तो मेरे अफसाने पढ़िए। अगर आप इन अफसानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि जमाना ही नाकाबिले बर्दाश्त है। 19 साल के साहित्यिक जीवन में उन्होंने 270 कहानियां लिखी, जिनमें टोबा टेक सिंह, ठंडा गोश्त, काली शलवार, बू, घाटे का सौदा जैसी कई चर्चित कहानियां शामिल हैं। 1940 में उन्हें ऑल इंडिया रेडियो के दिल्ली केंद्र में नौकरी मिल गई थी, जहां 1.5 साल के कार्यकाल में उन्होंने 100 से अधिक ड्रामे लिखे। उन्होंने कई फिल्मों के लिए कहानी और पटकथा लेखन भी किया, जिनमें किशन कन्हैया, एक डेज, चल चल रे नौजवां और 1954 में आई सुपरहिट फिल्म मिर्जा गालिब भी शामिल है। 1948 के बाद मंटो पाकिस्तान चले गए। तमाम जिल्लतें और परेशानियां उठाने के बाद 18 जनवरी 1955 को केवल 42 साल की उम्र में मंटो ने अपने उन्हीं तेवरों के साथ इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी कलम ने अपने वक्त से आगे की ऐसी रचनाएं लिख डाली जिनकी गहराई को समझने की दुनिया आज भी कोशिश कर रही है।
Yes, and he is the subject of two biographical films, the 2015 film Manto, directed by Sarmad Khusat, and the 2018 film Manto, directed by Nandita Das. And moving on, Robert Nesta Marley, or Bob Marley, was a Jamaican reggae singer, guitarist and songwriter. Considered one of the pioneers, Marley fused elements of reggae, ska and rocksteady in his music, and was renowned for his distinctive vocal and songwriting. Let's listen into his hit track, One Love.
कभी कभी चांदनी, सिलसिला, नूरी, दीवाना, कहो ना प्यार है जैसी बेहतरीन फिल्मों के पटकथा लेखक सागर सरहदी की आज जयंती है। सरहदी उनका तखल्लुस था। सिनेमा ने उन्हें भले ही 1976 में आई फिल्म कभी कभी से जाना हो, लेकिन साहित्य में उनकी आमद की धमक लघु कथा रखा से हो चुकी थी। यही कहानी बाद में फिल्म नूरी बनी। उनके लिखे नाटक बेशुमार पाठकों तक पहुंचे हैं और इनके मंचन को लाखों लोगों ने देखा है। जिस फिल्म से उन्हें सबसे ज्यादा याद किया जाता है वो थी बाजार, जिसकी न केवल उन्होंने कहानी लिखी थी बल्कि उसके निर्माता निर्देशक भी वही थे।
तुम घर की चार दीवारी में हमारी औरतों की तरह घुट घुट के मरती रहोगी और मर्दों का खिलौना बनती रहोगी। जब तक जीने के लिए किसी मर्द का सहारा चाहिए, चाहे वो अख्तर हो चाहे सलीम, तुम खिलौना बनी रहोगी। जिस दिन बिना सहारे के जीना सीख लोगी, उस दिन तुम्हारी अपनी शख्सियत होगी।
ये डायलॉग है फिल्म बाजार से, और ये साफ तौर पे दिखाता है कि वो ऐसे लेखक और निर्देशक थे जिन्होंने स्त्री मुक्ति की बात उठाई, और वो भी ऐसे समय में जब हिंदी फिल्मों में सारा जोर हीरो के कल्ट को विकसित करने पर था।
यस, एंड एरिक विक्टर बर्डन वाज बोर्न ऑन दिस डे 1941। ही इज एन इंग्लिश सिंगर एंड सॉन्ग राइटर। ही वाज प्रीवियसली द लीड वोकलिस्ट ऑफ द रॉक बैंड वार। Let's listen in to his hit track, House of the Rising Sun.
There is a house in New Orleans. They call the rising sun. And it's been the ruin of many a poor boy. In God, I know I'm one.
श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे इजाजत लेने का, तो मुदिता और अभिषेक मुखोपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।